श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 15। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। श्री बलदेव बुद्धभूषण जी की टीका। तो ये श्लोक दिखाता है कि भगवान, एकमात्र भगवान ही हमारे ज्ञान और हमारे अविद्या या हमारे अज्ञान का कारण है। उन्हीं के कारण जीव को कोई ज्ञान हो सकता है और उन्हीं के द्वारा अपस्मृति, भगवत अस्मृति भी होती है। कारण का अर्थात वही इसको क्रियान्वित करते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान हमको जानबूझ के भुलवा दे रहे हैं। हम भगवान को भूलना चाहते हैं तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। अगर हम भगवान को स्मरण करना चाहेंगे तो भगवान उस प्रकार की स्मृति भी हमको देंगे। तो वो कह रहे हैं कि भगवान चंद्रमा के हृदय में और प्रवेश करते हैं और साथ साथ अग्नि में प्रवेश करते हैं, जो जठराग्नि में प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार से उसी प्रकार से भगवान ही सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करके उनको नियमित करते हैं, इनका नियमन कर रहे हैं। और किस लिए प्रवेश कर रहे हैं? ताकि उनको ज्ञान दिया जा सके, आवश्यक ज्ञान दिया जा सके, जिसके द्वारा वो अपनी विभिन्न क्रियाएं कर सके। श्रुति कहती है, इसका समझ लीजिए, इसका अर्थ यह है कि सुबह उठ करके अगर आपको ये याद आता है कि मुझे ब्रश करना है, तो ये ब्रश करने का स्मृति भी भगवान दे रहे हैं। नहीं तो एक दिन सुबह उठ करके हम भूल जाएंगे कि हमें करना क्या है। तो ये सारी चीजें भगवान के द्वारा ही आ रही हैं। इसीलिए इससे एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि व्यक्ति को अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ कर पा रहा हूं। जैसे अभी मैं ये प्रवचन दे रहा हूं तो मैं कुछ सोच रहा हूं, अब मैं कुछ सोच रहा हूं और मेरे विचार वाणी के रूप में बाहर आ रहे हैं, तो इसको मैं नहीं जानता हूं कि ये कैसे हो रहा है। इस सब का क्रियान्वयन, विचारों को की उत्पत्ति यानी ज्ञान देना कि मुझे क्या बोलना है, जैसे मैं ये टीका पढ़ रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है, तो ये समझ में आने की प्रक्रिया भगवान के द्वारा हो रही है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। मुझे नहीं पता है कि मुझे, मैं कैसे देख पा रहा हूं, कैसे उसको उठा पा रहा हूं जो टीका सामने है मेरे, या मैं कैसे समझ पा रहा हूं। ये सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है। तो मैं केवल इच्छा कर रहा हूं कि मैं भगवान के बारे में कुछ बोलूं। तो ये बात ध्यान देना चाहिए कि जीव केवल इच्छा कर सकता है, लेकिन बाकी सारा क्रियान्वयन भगवान के द्वारा ही होता है। तो इसलिए हम लोगों को अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि हाँ भाई मैं ये गीता का प्रवचन दे रहा हूं और मैं दे रहा हूं, तो ये फिर अहंकार है। नहीं, हम भगवान पे आश्रित होकर के भगवान की सेवा के लिए कुछ कर रहे हैं और उसकी शक्ति भी भगवान हमको ही देते, हमको भगवान ही हमको देते हैं। अन्यथा कुछ भी कार्य करके मन में अहंकार आने की भावना स्वाभाविक है, लेकिन इस ज्ञान से अगर हम लोग युक्त रहेंगे कि भगवान पे हम पूरी तरह आश्रित हैं, तो फिर अहंकार नहीं होगा। श्रुति इस संबंध में कहती है, अंतः प्रविष्ट शास्ता ज्ञानानाम, कि वह सभी के अंदर प्रवेश किए हैं और भगवान को, सॉरी क्षमा कीजिएगा, और जीवों को, सभी व्यक्तियों को वह नियमित कर रहे हैं। ये तैतरीय अरण्यक उपनिषद से है। इस संबंध में आगे कहते हैं कि भगवान से ही स्मृति आती है। मतलब यहां पे अभी तक जो टीका हुई थी था वो था सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, किस प्रकार से भगवान चंद्रमा इत्यादि में प्रवेश कर रहे हैं, अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं और जीवों में प्रवेश कर रहे हैं। अब बात हो रही है कि इस प्रकार से भगवान को स्मृति आ रही है, यानी ज्ञान का वो पहलू जिसमें व्यक्ति उन संस्कारों के कारण या उन अनुभवों को ढूंढता है जो उसको पहले प्राप्त हुए हैं इंद्रिय भोग के विषयों का भोग करने से, वह स्मृति भगवान देते हैं। कहने का अर्थ है, सिद्धांत तो ये हो गया साधारण तरीके से, जैसे कोई व्यक्ति शराब पिया, अब जब उसने शराब पिया तो शराब पीने का अनुभव उसके चित्त पे आ गया, तो अब दोबारा उसके हृदय में जो स्मृति आएगी कि भाई मुझे शराब पीनी है, वह स्मृति, उस अनुभव की स्मृति भगवान दे रहे हैं। या फिर जैसे कोई दाल चावल खाता है, रोटी खाता है, तो जो उसके मन में संस्कार बन गया, उस संस्कार के कारण व्यक्ति उस अनुभव को दोबारा ढूंढना चाहता है, तो उस अनुभव की स्मृति भगवान देते हैं। तो ये तो समझ रहे होंगे आप लोग कि जो हम इस जगत में अनुभव करते हैं उनको दोबारा अनुभव करने की स्मृति, कि भाई जाओ दोबारा उस कार्य को करो, भी वह कार्य भी भगवान ही देते हैं। अन्यथा मान लीजिए कोई एक व्यक्ति भोग करे, वो करे कुछ भी करे, तो उसके बाद वो भूल जाए कि उसने उस क्रिया को किया है, तो फिर वो क्रिया दोबारा करेगा ही नहीं। तो अब ये बड़ी सूक्ष्म बात है कि अगर मैं कुछ भोग करता हूं तो उसके अनुभव को याद दिलाने वाले भी भगवान हैं, ताकि मैं और उस भोग को करूं, ताकि और फिर फंस जाऊं इस जगत पे। यानी हमारे बंधन को भी क्रियान्वित भगवान ही कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं कुछ भोग करूं और भूल जाऊं, तो ठीक है, खत्म हो गई बात, फिर तो मैं दोबारा करूंगा ही नहीं, मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन भगवान इसको बनाए रखते हैं जन्म जन्मांतर, ताकि हम इस जगत में बंधे रहें, क्योंकि हमारी इच्छा है बंधन की। देखिए, जब हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि भगवान हमें अपनी सेवा में नियोजित करिए, तो भगवान हमें क्रमशः बार बार उसको याद दिलाते हैं कि नहीं, फिर से भगवान की सेवा करना है। जैसे इस समय भजे भगवान ने स्मरण दिलाया कि आप गीता की प्रवचन बोलिए, क्योंकि इस प्रकार का अनुभव मेरा पहले है। और अब मान लीजिए व्हाट्सएप पे ये लेक्चर आपके पास आता है, तो आपको क्योंकि गीता प्रवचन करने का अनुभव, सुनने का अनुभव था, तो आपको फिर भगवान स्मृति दिला रहे हैं कि फिर से जाओ भगवत गीता सुनो। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मुक्ति के लिए भी भगवान स्मृति देते हैं, अगर हम भगवान के संबंधित किसी तरह कुछ कार्य कर लें। देखिए, इस चीज को बड़ा ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, भोग करने की प्रवृत्ति तो सभी जीवात्माओं में है, हम तो भोग कर ही रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भक्ति करने का अनुभव व्यक्ति को तभी प्राप्त होगा जब वो भगवान के भक्तों का संग करे, और अन्यथा भगवान की भक्ति करने की इच्छा जीव में आएगी ही नहीं। फिर समझ लीजिए, ये बात शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, भोग करने की जो इच्छा है वह तो पूर्व के अनुभवों से है, और जो बद्ध जीव है वह अनादिकाल से इस जगत में है, तो भोग करने की इच्छा तो डिफॉल्ट मोड है, मतलब स्वाभाविक स्थिति है जीव की। लेकिन भक्ति का संस्कार जीव का नहीं है, जो नित्य बद्ध जीव है। तो भक्ति का संस्कार जब पड़ेगा, जब उसको एक भक्ति का अनुभव प्राप्त होगा, तब भगवान उसको स्मृति दिलाएंगे कि भाई दोबारा जाकर के भक्ति करो। जैसे कोई भगवान का प्रसाद पाए, भगवान मंदिर में आए, भगवान के भक्तों से मिले, या भगवान की कथा सुने, तो भगवान फिर उसको स्मृति दिलाएंगे कि और कथा सुनो। तो ये जीव पे सबसे बड़ी कृपा है कि उसे किसी तरह से भक्ति करने की कुछ मौका दिया जाए, कुछ संपर्क तो हो। इसको श्रील प्रभुपाद जी एक जगह समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति भक्ति में नहीं आ सकता जब तक उसका भक्ति से कोई संपर्क ना हो पहले। तो ये, और ये कर्मों की वजह से नहीं होता है, तो ये भगवान की अहितु की कृपा है कि भक्तों का संग हमको मिलता है, और उसके द्वारा हमें कुछ भक्ति का अनुभव प्राप्त होता है। और सभी लोग समझ सकते हैं कि जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो वह हमको बहुत अलग लगता है, वो अनुभव हमको हमारे भोग के अनुभव से बिल्कुल अलग लगता है, यहाँ तक कि प्रसाद को ग्रहण करना भी बहुत अलग लगता है। तो फिर व्यक्ति दोबारा प्रसाद खाने के लिए जाता है, या दोबारा कीर्तन में जाता है, दोबारा कथा में जाता है, और इसके द्वारा उसकी भक्ति करने की स्मृति भी भगवान फिर देते रहते हैं। तो मुख्य बात यह है कि जब भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा तब ऐसा अनुभव होगा, और फिर भगवान वैसे इस प्रकार की स्मृति हमको देंगे, और धीरे धीरे जब भक्ति का वेग बढ़ता चला जाएगा तो फिर व्यक्ति भोगों की तरफ अपने आप ही उसकी अपस्मृति हो जाएगी, भूल जाएगा भोगों को। जिस प्रकार से भोगों में लगने से व्यक्ति भक्ति को भूला हुआ है, ऐसे ही भक्ति में लगेगा तो भोगों को भूल जाएगा। और भगवान कह रहे हैं कि भगवान से ही इस ज्ञान का और स्मृति का विस्मरण भी होता है, मतलब भोग करने का ज्ञान, उसका विस्मरण भी हो जाता है, और बहुत ध्यानपूर्वक भोगों के अनुभव की विस्मृति भी भगवान से आती है। तो यानी भगवान से हम प्रार्थना करें कि भगवान भोगों का जो हमारे चित्त में अनुभव है उसको आप मिटा दीजिए, हरे कृष्णा हे कृष्ण हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान ही इस स्मृति को भी नष्ट कर देंगे। और आप लोग महसूस भी करते होंगे कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और भोगों से दूर रहने का भी प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी बातें तो हमारे चित्त से भगवान साफ ही कर देते हैं, वो हृदय में आती ही नहीं है। तो यदि हृदय में कोई बातें आ रही हैं तो बहुत ही पास में किए गए भोगों के द्वारा ही आती हैं। यानी कि अगर भक्त भक्ति करे और भोगों से दूर रहे तो भगवान बहुत जल्दी उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं और भोगों के अनुभव को वो भुला देते हैं। और उसको यानी अगर अनुभव को भुला देंगे तो फिर इसका अर्थ है उसके स्वाद को भी भुला देंगे और ये याद नहीं दिलाएंगे कि जाकर तुम वापस भोग करो। तो ये बात हमने सीखी किस प्रकार से भगवान ज्ञान और अपोहनम दे रहे हैं, स्मृति दे रहे हैं। उद्धव जी संबंध में कहते हैं, त्वत्तो ज्ञानम ही जीवानाम प्रमोशस्तत्र शक्तितः, कि भगवान आपसे ही जीवों का ज्ञान आता है और आपकी ही शक्ति से उनका ज्ञान चुरा लिया जाता है। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 22वां अध्याय 28वां श्लोक। अब भगवान ने यहां पे दिखाया कि वही जीव को भोग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अब अगले भाग में वेदेश सर्वेर वाले भाग में भगवान बताते हैं कि भगवान ही जीव के मुक्ति का कारण बनते हैं। भगवान एकमात्र अकेले भगवान ही जो सभी शक्तियों को धारण करते हैं कृष्ण, वही भगवान, वो भगवान ही वेदों को जानते हैं, क्षमा कीजिएगा, वही भगवान वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, एव वेद्यो मतलब वेद के द्वारा भगवान को, वेदों का एकमात्र उद्देश्य है भगवान को जानना। और अगर कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जाना तो वेदों को पढ़ने के बाद भी उसका जो उद्देश्य था पढ़ने का वह वो फ्रूटफुल नहीं हुआ, मतलब फलान्वित नहीं हुआ, फलोन्मुख नहीं हुआ, वो समझ नहीं पाया वेदों को पढ़ने के बाद। श्रुति कहती है, योसौ सर्वेर वेदर गीयते, भगवान ही है, भगवान ही हैं जिन्हें सभी वेदों में, जिनका सभी वेदों में गुणगान किया जाता है। इसे गोपाल तपनी उपनिषद में बताया गया है। और आगे बता रहे हैं कि कर्म कांड जो भाग है वेदों का, उसके द्वारा इनडायरेक्टली मतलब थोड़े घुमा घुमा करके भगवान को जानने का प्रयास किया गया है, क्योंकि कर्मकांड में भी जो यज्ञ किए जाते हैं वो विष्णु को समर्पित किए जाते हैं, और ज्ञान कांड के द्वारा सीधे भगवान को जानने का प्रयास किया जाता है। तो अब प्रश्न आएगा कि इस ज्ञान को व्यक्ति कैसे समझे। तो कह रहे हैं कि मैंने वेदों का जो सार है, वेदांत, वेद का अंत जो वेदांत है, उसको वेदांत सूत्र कहा जाता है, तो उसका भगवान ने संकलन किया बादरायण के रूप में, बादरायण मतलब वेदव्यास जी के रूप में। और इस संबंध में वेदांत सूत्र के रचयिता शिव वेदव्यास कहते हैं, तत्तु समन्वयात, कि विष्णु ही वेदों का विषय है, क्योंकि यही सारे वेदों के, जितने भी वेदों की ऋचाएं हैं, जितने भी वेदों का कह सकते हैं श्लोक हैं, उनका मूल उद्देश्य है। ये वेदांत सूत्र में 1.1.4 में बोला गया। लेकिन कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई नहीं, ऐसा तो नहीं है, अन्य लोग वेदों के अर्थ को किसी अलग तरह से बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, नहीं, वेदवित मैं ही, वेद विदेव चाहम, यानी कि मैं ही वेदों को जानता हूं। एव मतलब केवल भगवान ही जानते हैं, अन्य लोग अगर वेदों को कुछ अलग तरह से बताते हैं तो इसका अर्थ है वो वेदों को नहीं जानते। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वेदों को जानता हूं और मैं बादरायण बन करके वेदों के अर्थ को प्रस्तुत किया हूं, यानी कि बादरायण के ऋषि के रूप में, वेदव्यास के रूप में जो भगवान ने निर्णय दिया है वही वेदों का अर्थ है। और अगर कोई दूसरा अर्थ व्यक्ति करता है तो उसमें कुछ ना कुछ गलती अवश्य होगी। तो यानी कि बादरायण के रूप में भगवान ही हमें मुक्ति देते हैं। क्यों? क्योंकि वेदों के द्वारा ही व्यक्ति, अकेले वेदों को पढ़ करके व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता, इसलिए भगवान ने वेदांत की रचना करी जिसके द्वारा हम सीधे भगवान को समझ सकते हैं। और जब हम भगवान को समझ लेंगे तो हमारी मुक्ति सुनिश्चित है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस श्लोक को समझ पा रहे होंगे कि वेदों को समझने वाले, वेदों का समझने का एक, वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को समझना, और अगर इस उद्देश्य को हम समझना चाहते हैं तो वेदांत की शरण लेनी होगी। और वेदांत जो है स्वयं बादरायण के रूप में भगवान आए और ने प्रस्तुत किया। और वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम को अगर व्यक्ति पढ़ता है तो उसे वेदांत का ज्ञान हो जाता है और भगवान का भी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वेदांत के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है सीधे तरीके से। और अगर कोई व्यक्ति कर्मकांड भाग में फंस जाएगा तो वो भगवान को नहीं समझ पाएगा वेदों के कर्मकांड भाग में। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। ये तो हम समझा दिए थे आपको। जीव अपनी विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों के साक्षी हैं। ये आप समझ लीजिएगा, इसका अर्थ यही है कि पिछले कर्मों के अनुभवों के कारण जो मन में संस्कार है उसको भगवान याद दिलाते हैं कि तुमने पिछले जन्मों में ऐसे भोग किए थे, अब देखो फिर से वापस प्रेरणा देते हैं, फिर से उन्हीं कार्यों को करियो। यह है मतस्मृति का अर्थ। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है। तो मैं समझता हूं आप लोग समझ रहे हैं इस बात का अर्थ कि क्या कार्य करना है और उस कार्य को कैसे करना है। क्या कार्य करना है ये स्मृति का भाग है, ये स्मृति देते हैं भगवान, और कैसे करना है ये ज्ञान का भाग है, ज्ञान देते हैं। जैसे कि आपने कल ब्रश किया था तो अब आज सुबह भगवान याद दिलाएंगे कि ब्रश करो और कैसे ब्रश करो, ये ज्ञान भी भगवान देते हैं। लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि क्या भोग दिए थे, क्या भोग किए थे, ये हम भूल जाते हैं। कम से कम पिछले जन्म के तो भूल ही जाते हैं। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं अपितु वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। यानी कि किस प्रकार से भगवान पूजनीय है, क्योंकि भगवान पूरे जगत को नियमित कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो मुक्ति के कारण भी हैं, क्योंकि भगवान कृपा करके शास्त्र के रूप में आते हैं। माया मुक्त जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कौले कृष्ण वेद पुराण। माया से मुक्त जीव कृष्ण को नहीं समझ सकता, इसलिए कृष्ण कृपा करके वेदव्यास बनते हैं, माधवरायण ऋषि के रूप में आते हैं और शास्त्र पुराण इत्यादि देते हैं, जिसके द्वारा जीव कृष्ण को समझ पाता है, अपने संबंध को कृष्ण से समझ पाता है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवतम के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं, वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय। बहुत सुंदर बात है, देखिए दयामय है क्योंकि जीव अनंत अनादि काल से भगवान को भूला है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भी उससे गुस्सा हो जाए, क्या मरने दो उसको, क्या फर्क पड़ता है हमको। नहीं, भगवान कृपा करते हैं और वो देख रहे हैं कि जीव थोड़ा सा भी उनकी तरफ उन्मुख हो जाए तो भगवान पूरा खींच लेते हैं। सर्व कल्याणप्रद हैं क्योंकि अदतो गत्वा कल्याण जीव का तभी होगा जब वो भगवान की तरफ उन्मुख हो। तो भगवान इस प्रकार से कल्याण करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं ताकि जीव किसी तरह से उनकी तरफ उन्मुख हो जाए, उनकी तरफ आगे बढ़ जाए। और हमने इस चर्चा कर लिया था इसलिए हम समझा नहीं रहे कि वेदांत सूत्र के द्वारा भगवान को सीधे जाना जाता है, इसलिए भगवान स्वयं आकर के रचना की। हम में से तो कोई नहीं गया था भगवान से प्रार्थना करने के लिए, भगवान वेदांत सूत्र की रचना कर दीजिए। तो हम समझ सकते हैं कि यह सब कुछ भगवान अपनी अहेतु की कृपा से करते हैं ताकि हम उनको समझ सकें और फिर उनके धाम की प्राप्ति कर सकें। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, जीव जो ही अपने शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। बहुत सुंदर बात है। देखिए आप में से सभी लोग, मान लीजिए कोई शादी किया है तो पत्नी बच्चे हैं उसके, और प्रायः इस प्रकार से इस जीवन में लोग बड़े आविष्ट होते हैं कि भाई ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये मेरे कर्तव्य हैं। लेकिन ये बताइए कि क्या पिछले जन्म की पत्नी बच्चों के बारे में कुछ स्मृति है? तो देखिए जो एब्जॉर्प्शन आपका इस समय, जो अभिनिवेश इस समय आपका जीवन में है, उसी प्रकार का अभिनिवेश पिछले जन्म में भी था और ये सब भगवान से ही आ रहा था। हाँ, लेकिन कुछ आपने भक्ति करी होगी पहले, इसीलिए भगवत गीता भागवत सुनने की इच्छा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारा मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। केवल इन जगत के छोटे मोटे कर्तव्यों में फंसे रहना ये जीव का लक्ष्य नहीं है, ये बात समझ देना चाहिए। तो भगवान हम इस समय, हाँ, और दूसरी बात यह है कि देखिए इस समय आप बिल्कुल भूले बैठे हैं कि पिछले जन्म में आपके पति कौन थे, पत्नी कौन थे, बच्चे कौन थे, क्या थे, क्या शरीर प्राप्त किया, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि इन कार्यों का कोई खास महत्व है नहीं, और भगवान की प्रेरणा से फिर हम लोग उन्हीं भौतिक कार्यों में लग रहे हैं क्योंकि हमने पहले कार्य किए थे।
अब भगवान की कृपा से अगर भक्ति करने का मौका मिल रहा है तो अधिक अधिक भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम भगवान के करीब पहुंच सकें जल्दी से जल्दी। यद्यपि जीव भूल जाता है लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति उसने पिछले जन्म में नहीं करी है उनकी व्यवस्था उसके कर्म के अनुसार भगवान इस जन्म में फिर से करते हैं और फिर से उसको स्मृति देते हैं कि इस प्रकार से कार्य करो। नहीं तो देखिए, एक ही घर में जन्मे दो लड़के हो सकते हैं, दो बच्चे हो सकते हैं, तो एक बच्चा जो है वो बहुत सात्विक होता है और दूसरा बच्चा जो है वो बहुत रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा, वो कृष्ण की स्मृति नहीं करना चाहता, भक्ति नहीं करना चाहता है। तो क्यों हो रहा है? पहले के किए गए संस्कार के कारण। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता है अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्रदान करता है। मतलब ये तो आप समझ रहे हैं, अब तक समझ गए होंगे कि भोग हम करते हैं भगवान की कृपा से, व्यवस्था भगवान करते हैं, लेकिन भगवान हमें उनसे समझने का मौका भी देते हैं वेद इत्यादि देने के, वेद के द्वारा, भागवत के द्वारा। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। योसव सर्व वेदेर गीयते, चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का ज्ञान है, गान है। तो यानी कि सारे वेद पुराण जो है वो भगवान की कीर्ति से भरे हुए हैं ताकि जीव कृष्ण की कीर्ति को उसके संपर्क में आए, उसको सुने और समझ जाए कि कृष्ण मेरा प्रभु त्राता जीवर हैल ज्ञान, कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, वही मेरे त्राता हैं, वही मेरे मुक्ति प्रदाता हैं, वही मेरे पति हैं, मतलब स्वामी हैं। इस प्रकार से कृष्ण की सेवा में लग जाए तो जीव तुरंत मुक्त हो जाता है। लेकिन आप जानते हो, अगर आप इस लेक्चर को मान लीजिए पहली बार सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कृष्ण मेरे स्वामी हैं, ये कहाँ से आ गई बात। ऑब्वियसली आपको पहले के सारे प्रवचन सुनने पड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, लेकिन जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। तो कृष्ण की सेवा में अगर वो लग जाता है तो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए सारे वेदों में भगवान का गुणगान किया गया है ताकि उस गुणगान को सुन करके जीव कृष्ण के प्रति आकर्षित हो और उनकी सेवा में लगे। और यहाँ भी यह चर्चा हम यही सुन रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग भगवान के ऊपर आश्रित हैं और इस प्रकार से हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग का सहज स्वभाव है कि इस जगत के कर्तव्यों को तो बहुत महत्व देते हैं कि ये करना है, वो करना है, बच्चों का पालन करना, बच्चों को पढ़ाना है, नौकरी करनी है, रात दिन लगे रहते हैं। लेकिन भगवान की सेवा करनी है ये बहुत हल्का हल्का श्रद्धा होती है, बहुत हल्की हल्की श्रद्धा होती है कि इस पे मान लीजिए कोई बोला जाए कि 50% भगवान को देना है तो बहुत तकलीफ होगी अपनी सैलरी का। लेकिन अगर बोला जाए कि 90% पत्नी को देना है तो बड़ी आसानी से लोग देने के लिए तैयार है, दे ही रहे हैं, 100% दिए जा रहे हैं, 90% क्या। तो देख रहे हैं कि अपना संबंध भगवान से तो बहुत कम अनुभव होता है लेकिन जगत के लोगों से जिनसे वास्तविक रूप से सीधा संबंध नहीं है तो उनके पीछे हम लोग पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो ये बुद्धिमानी नहीं। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। ये देख लेना चाहिए कि वैदिक कर्मकांड जब व्यक्ति करता है तो उसमें इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लेकिन सीधे तरीके से नहीं होता लेकिन थोड़ा घुमा करके विष्णु की पूजा की जाती है। तो उसके द्वारा व्यक्ति भगवान की तरफ धीरे धीरे उन्मुख होता है। फिर जब वो कर्मकांड से क्रॉस करेगा उसके बाद वो ज्ञान कांड में आता है। फिर वहां पे थोड़ा वो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और अंततोगत्व वेदों में वर्णित जो भक्ति है, भक्ति मार्ग है, जब उस पर वो आता है तब भगवान को पूरी तरह से जान पाता है। तो क्रमशः मान लीजिए कोई कर्मकांड का अधिकारी है, उसकी श्रद्धा कर्मकांड में है तो वो कर्मकांड करेगा तो वेद में ऐसे सेट किए गए हैं कि वह ज्ञान के स्तर पे आ जाएगा। फिर ज्ञान से वो आगे और बढ़ेगा तो भक्ति के स्तर पे आ जाएगा। तो अंततोगत्व वेद जीव को एकदम निम्न चेतना से धीरे धीरे उठा करके भक्ति स्वीकार करने की योग्यता पे लेके आते हैं। तो जो व्यक्ति वेदों का मार्ग का अनुसरण करता है धीरे धीरे वह भगवान की तरफ पहुंच पाता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उसकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान की चरम लक्ष्य है ये हम सब सारा कुछ समझ पढ़ चर्चा कर चुके हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। तत्व समन्वयात, मनुष्य तीन अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। ये बहुत अच्छा सेक्शन है। इसे कहा जाता है संबंध अभिधेय और प्रयोजन। जीव अपना संबंध भगवान से समझे कि वह कृष्ण का दास है, और कृष्ण के दास के रूप में जो उसके कर्तव्य हैं भक्ति, उसे अभिधेय कहते हैं यानी साधन। और जो जीव का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वह है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो वो जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तो उस प्रेम से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। कृष्ण को प्राप्त करना अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। तो इन तीन चीजों को ही वेदों में बताया गया है। जैसे हम यहां देख रहे हैं वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना, तो यानी कि ये वेदों का उद्देश्य अगर कृष्ण को समझना है तो वेदों में केवल तीन ही सब्जेक्ट हैं, इसे कहा जाता है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध हमने क्या मतलब समझा, संबंध मतलब जीव का कृष्ण से क्या संबंध है ये समझना, वो कृष्ण का दास है, नित्य दास है, और वाकई जो स्वरूप है उसको प्रकट करने के लिए कुछ करना, साधन, और वो साधन है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण और अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। और इसके द्वारा क्या होगा, भगवत प्रेम की प्राप्ति जो हमारे हृदय में ही सुप्तावस्था में है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है तो भगवान को समझ पाता है। इसका अर्थ क्या है, देखिए भगवान में ऐश्वर्य है, असीमित ऐश्वर्य है और असीमित माधुर्य है। तो इस असीमित ऐश्वर्य और असीमित माधुर्य को व्यक्ति प्रेम के द्वारा समझता है। जितनी श्रद्धा उसकी विकसित हो गई है, जितना प्रेम भगवान में विकसित हुआ है, उतनी मात्रा में वह भगवान को समझ पाएगा। तो ये प्रेम विकसित होता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा। तो जो व्यक्ति समझ गया कि भगवान, वेदों का उद्देश्य है भगवान को समझना, और जैसा भगवान गीता में बोलते हैं भक्त्या मम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, तो वो व्यक्ति वेदों के उद्देश्य को समझ गया। तो यानी अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवद गीता पढ़ता है, खाने को भोग लगाता है भगवान को, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से भक्ति कर रहा है, तो वो वेदों का ज्ञाता है। और अन्यथा वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाला व्यक्ति और भगवान की भक्ति से विमुख व्यक्ति, वो वेदों को समझ नहीं पाया और वेदों के उद्देश्य को भी नहीं समझ पाया। तो आप देख सकते हैं भगवद गीता कितना सुंदर ग्रंथ है। हम संपूर्ण वेदों को पढ़ने के बजाय सार रूप में वेदों का उद्देश्य समझ लें, और उसके बाद वेदों के उद्देश्य यानी कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की तरफ उन्मुख हो जाएं, तो हमारा जीवन सबसे ज्यादा कल्याणमय हो जाएगा। इससे अधिक कल्याण कभी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा।